если Барабхи от всех разных самотии. Кришна Матхура Айахет, Вриндаван все. Радха Раш Бихари Чинки. Сачинандан Гаурхари Митьянанда Прабуки. Кришна Матхура Падхари. Сад на Балдев Джи. Матхурангал Сидам. Асав Сакхалу Пхияй. Кришна не каха. Зара Матхура ка дарсан то карай. Кал Ханус Джаке ме чална. Мы просто дарсан карне ке лие сакхао ке саат не гэ. Шримад Бхагават ме бада сундар иска варнан хэ. Кой янда за рая хэ кандхе се. Суна хэ. Саби лог дог 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 ке жа рэ хэ. Каха жа рэ хэ. То тумне не суна. Кришна ае хэ. Ор Балдев Джи. Аре Ясода ке яхи путр хэ унке. Девки Апасте ке яхи путр хэ. Чори кар кар рах дия тха гопи. Во айе. Бадай сундар. То чало хам бхи чалэн. Андха андхе се кара. То чало хам бхи чалэн. Бас андха ка. Во лакхия покар кар ке дусра андха бхи никал гая. Каха жа рэ хэ. Ек андхе ко бхи ичха таманна хо жати хэ. Я Кришна ка хам руп дэкхэ. То жинко аанхе хэ. Jo parun tarun ya taruni kishor kishori hain to unke liye to baat hai kya sab log krishna ke darshan ka atari se upar se pushp ki varsha ho rahi hai lai ki khoye ki ye sab varsha ho rahi hai krishna chalte chalte rang bhumi mein pahunche kans ke jahan par chatu mushtik palwan tosal hal kusal ityadi sab wahan par the हाथी एक बीच में खड़ी कर ली गई थी मतवाला हाथी कुबल्या अपने टक्कर का वो दूसरा हाथी विश्व में नहीं था हजार हाथियों का बल उसमें था हाथी को उन्होंने बीच में अड़ा दिया कृष्ण ने उसे और बलदेव जी ने दोनों ने उसे बात की बात में मार करके और आगे बढ़ गए जब अखाड़े के पास में पहुंचे तो छींटे रक्त के दाग कुछ छींटे पड़े इतना सुंदर लग रहा है जब बड़ा सुंदर लगता है वो धागे भी बड़ी सुंदर लग रही निकट में आए चारों मुस्क ने कृष्ण और बलदेव को एक एक को पकड़ लिया तुम लोग आए हो दर्शन करने के चलो राजा कंस का मनोरंजन करें अभी हम लोग कुश्ती करें परस्पर बस चारों को कृष्ण ने कृष्ण को और मुस्टिक ने बलदेव जी को पकड़ लिए सब लोग हाहाकार करने लगे छोटे से अभी दूध पीने वाले बच्चे अत्यंत किशोर कोमल शरीर और कहा ये पहाड़ जैसे करिष्ठ और बड़े बलवान ये बराबर की कुश्ती होनी चाहिए ऐसी कुश्ती नहीं होनी चाहिए इसको देखने से ही पाप लगता है कृष्ण ने कहा जी भाई हम तो अपने बराबर वालों से लड़ेंगे और आप तो बड़े पहलवान हैं आपसे हम कैसे लड़ेंगे जा अरे हमने सुना है तुमने अभी कुबल्यापुरी को मार दिया अगर तुम बकरसुर को मारते तुमको देर नहीं लगी पुतला को तुमको मारते हुए देर नहीं लगी तुम लोग जंगल में खेल करते हो कूद करते हो बयान करते हो लड़ते हो अरे भाई उम्र से बात नहीं होती है बल से काम होता है तो तुम साधारण नहीं हो एक खेत करके बस अब दोनों में जोड़ी लगने कृष्ण उनको पकड़ करके खींच रहे हैं वो उनको बैठ ताली बजा रहे हैं इधर में बज रही है टुकटुकी बज रही है नगाड़े बज रहे हैं जिसके अंदर में रक्त नहीं उसके अंदर में भी रक्त और जोश आ जाए खूब जोश से युद्ध चलने लगा कभी वो उनको खींचता है कभी वो रक्त मारता है कभी वो और पैर तरह भाज रहे हैं जिस समय कृष्ण को चारों और मुस्टिक मारता है बलदेव जी को खुशी से और प्राण लेने पर आया दोनों का जो नियम है वो तो रख दिया इधर और बेहद चलने लगा बच्चे को मारने के उस समय जब वो मुष्टिका धारण करता है तब कृष्ण को कैसे लगता है मानो कि एक विशाल हाथी को कोई कोमल हाथ से कुछ मारता है वो हाथी को चुप उल्टी एक गुलाब के फूल से या कमल के उसके ऊपर आप बड़े जोर से मारिए, उसको क्या लगेगा? कुछ नहीं। आज कृष्ण को बिन रस साधन और आज कृष्ण को बड़ा अच्छा रहा था, वो भी काल को कथा फील रहे हैं, बड़ा आनंद रहा है कृष्ण को बलदेव। ये जो कृष्ण को जो आनंद लग रहा है उसमें बतला अनुसुल्य कृष्ण अनुसुल्य नम, अर्थात तो कृष्ण को अच्छा लगे उसको कहते हैं भक्ति। तो कृष्ण को तो आज बड़ा आनंद हो रहा है, इसलिए इसको भी भक्ति कह दीजिए। भक्ति होगी कि नहीं होगी? कृष्ण का इस समय आनंद जो लग रहा है ये भक्ति नहीं होगी। क्यों? प्रतिकूल भाव युक्त ये है, उसकी इच्छा कृष्ण को आनंद देना नहीं है, उसकी इच्छा कि आज कृष्ण को मार करके आज खत्म कर देंगे, इसलिए उसके अंदर की इस वृत्ति के वजह से ये प्रतिकूल भाव है। इसलिए अनुकूल है अनुकूल लेना, अर्थात कृष्ण के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। प्रतिकूल भाव ने अर्थात कृष्ण को मार डालेंगे ऐसा भाव, ये प्रतिकूल भाव है, इसलिए भक्ति नहीं होगी। कृष्ण को भले ही अच्छा लगे, इसे सब कुछ कृष्ण के अच्छे लगने पर ही नहीं है, अपने मन की वृत्ति भी रहनी चाहिए जो कृष्ण के अनुकूल ही सेवा करे। इसलिए ये अर्थ हुआ अनुकूल माने अनु निरंतर, अनु माने वैष्णव के अनुगत, कृष्ण को अच्छा लगे किंतु उसके प्रतिकूल भी नहीं हो। शीलन अनुशीलन, अनुशीलन ही भक्ति है किंतु उसके दो जो पहले बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाभिरूपतम, ये दो चीज नहीं दूर हो, अनुशीलन भी करता रहेगा और अनुकूल नहीं हो तो उत्तमा भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो होगी, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा संग सिद्धा आरोप सिद्धा ये हो जाएगी ना? और उसके द्वारा आप संसारिक सुख जितने हैं सब आपको मिल जाएगा, जो कुछ चाहेंगे उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा, धन जन पुत्र परिवार संपत्ति यहाँ तक कि स्वर्ग इत्यादि जो कुछ चाहेंगे, विभूतियां आष्ट सिद्धियां नौ प्रकार की निधियां ये सभी सभी कुछ किसी को वशीकरण कर लेंगे, किसी को चाहेंगे तो मार भी सकते हैं, किसी को चाहे तो रुपया नोट हजार हजार ऐसे निकाल करके झर करके गिरने लग जाए, ये सब कुछ हो जाएगा भाई, किंतु प्रेम नहीं होगा उसके लिए उत्तम भक्ति। इसलिए अनुशीलन में भी अनु और शीलन, शील माने क्या? ये संस्कृत शब्द है शील, शील माने क्रिया करना। हमको हमारी जो तीन प्रकार की चेष्टाएं हैं, कायिक चेष्टा अर्थात तो इसमें ग्यारह इंद्रियां हमारी हैं, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सबके द्वारा ही भगवान के अनुशीलन में लगना पड़ेगा। इसलिए चेष्टाएं होती हैं कायिक की चेष्टाएं, मंदिर मार्जन करना, फूल ले आना, हार गूंथना, कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण के लिए भोजन अर्पण करना, उनकी आरती उतारना इत्यादि चौसठ प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें ही अपने इन कायिकी वाचिकी और मानसिक चेष्टाओं को करनी चाहिए। ये चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्रियात्मक रूप में, एक होता है भावात्मक रूप में। एक तो करते हैं एक नहीं करना चाहिए, इसमें भी आता है। जैसे आपने भाव समर्पण किए कृष्ण को, जब मैं एक गोपी के रूप में गोपियों की दासी बनकर के कृष्ण की सेवा करता हूं, ये काय की चेष्टा हुई न बाकी की न मानसिक क्या हुई? ये आत्मिक चेष्टा है, ये भाव, ये भावात्मक रूप में होना चाहिए और क्रियात्मक दोनों रूप में होना चाहिए। क्रियात्मक में कुछ निषेध की गई है, क्या? काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य मत करो, मन में क्रोध में जीवा में उदर में उपस्थित को दूर रखो, कुसंग मत करो, अत्याहार अधिक मत खाओ, अधिक मत सो, दुर्जनों का संग मत करो, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनका संग मत करो, जो विषय में फंसे हुए हैं। अपिचेतु दुराचारो भजते माम अनंत भाग, भगवान का भजन करते हैं किंतु दुराचार भी उनके साथ में है, उनको मन ही मन में आदर हो, किंतु उनका संग मत करो, उनकी उपदेशों को मत ग्रहण करो जो आचरण नहीं करते। इसलिए आचरण के साथ साथ में सद विचार, आचरण और भक्ति भी होना चाहिए। उन्हीं लोगों का अनुसरण करेंगे, उनके संग में हरि कथा सुनेंगे। यहाँ पर कृष्णानुशीलनम का तात्पर्य केवल कृष्ण से ही नहीं है, इससे अनुकूल ये संबंध है, कृष्ण और कृष्ण के परिकर जो है वो सभी का। गुरु जी भी आ गए, सब लोग भी आ गए, उसमें परिकर जो नित्य राधा जी, उनके अनुगत मंजरी लोग, ललिता, विशाखा, चित्रा, नंद बाबा, वसुदेव जी, यशोदा जी, सुबल सिद्धाम इत्यादि, ये सब लोग हैं उनके परिकर हैं। इनका भी अनुशीलन करना चाहिए। बल्कि इस समय में साधन अवस्था में हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा की अपेक्षा, कृष्ण के भगवत भक्तों का नाम और उनके लीला चरित्रों को पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। भागवत में प्रारंभ कहां से किया? नारद जी ने अपना चरित्र और भक्ति की बातें व्यास जी को दी। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को अपना जीवन चरित्र बतलाया। उसी प्रकार से गुरु जी अपना जीवन चरित्र, भक्तों का जीवन चरित्र बतलाएंगे, उसके अनुसार में हमको चलना चाहिए। कृष्ण का अनुशीलन करने से कुछ गड़बड़ हो सकता है। कृष्ण के उपदेशों को हम नहीं भी समझ सकते हैं, उनके चरित्र को। कृष्ण ने राज किया, हम भी राज करेंगे? लड़कियों को कपड़े हटा करके दर्शन किया, हम भी करेंगे? कृष्ण ने तो सब कुछ खाया, हम भी करेंगे? कृष्ण तो सांप पर चढ़ करके काली के ऊपर में नृत्य किया, हम भी करेंगे? विष खाया, आग खाए, हम भी करेंगे? ये सब नहीं। भक्तों का चरित्र, उसमें भी उत्तम भक्तों का नहीं, मध्यम भक्त के, जिनका हम चरित्र और विचार समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, इन गुरु मध्यम अधिकारी उन्हीं के विचारों को लेकर के अधिक चलने से हमारा अधिक कल्याण होगा। इसलिए राधा नाम करते हैं हम, किस लिए? कृष्ण प्रसन्न हो। और कृष्ण नाम किस लिए करते हैं? राधा जी प्रसन्न हो। हरे कृष्ण, हरे माने राधिके, कृष्ण के विचित्र को हरण करने वाली राधिका का नाम हरा है, संबोधन में हो गया हरे। इसलिए हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे कृष्ण हरे इसलिए करते हैं कृष्ण को आनंद हो, और कृष्ण किस लिए करते हैं? राधिका जी हम प्रसन्न होंगे, हमें सुख होगा, इसके लिए भाई हरि नाम मत करो, हम मुक्त हो जाएंगे, दुख नहीं होगा, मत करो। जब तक गुरु पदाश्रय नहीं किया था, आश्रम में नहीं आए थे, तब तक के लिए इसमें कोई भी काम करो, इसमें विचार करो, ये इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, हमारे गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे कि नहीं, तब तो वो ठीक है, तब उस काम को करो, अन्यथा उस काम को कभी खबरदार मत करो अपने सुख के लिए। ये सब विचार लेकर के अब इसमें एक विचार और हो, अन्याभिलाष न कह करके अन्याभिलाषिता क्यों कहा गया? अन्नाभिलाष माने क्या अर्थ है और अन्नाभिलाषिता का अर्थ क्या है? देव और देवत्व। देव माने क्या? जैसे इंद्र देव है, कृष्ण देव है, ये राम इत्यादि देव है। और देवत्व माने क्या होता है? देवताओं का गुण। हरि और हरित्व, साक्षात हरित्वेन, और साक्षात हरि में अंतर है, साक्षात हरि कृष्ण है, और हरित्व माने कृष्ण के जो गुण हैं जिनमें हैं वो गुरु, उनके सेवक हैं। इसलिए दोनों को एक मत कर देना। इसलिए यहां पर जो अन्नाभिलाष और यहां पर है अन्नाभिलाषिता, दोनों में अंतर है। अन्नाभिलाष कहते हैं कोई भी इच्छा, कोई भी कामना जो कृष्ण की सेवा से अतिरिक्त है। जैसे कोई एक व्यक्ति आया और आकर के हमें प्राण से मारने लग गया, जबरदस्ती 10-20 थप्पड़ जवा दिया, कहीं तुम्हें मार डालूंगा, और मारने लग गया। अब उस समय वो कहता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब ये रक्षा करना जो कहा कृष्ण से, ये अन्नाभिलाष है कि नहीं है? आप लोग विचार कीजिए, इसमें कृष्ण की सेवा करूंगा ये भाव है उस समय,
हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। यह जो प्रार्थना है यह तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त एक हुई। अब इसमें यह विचार करते हैं, इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। अन्नाभिलाषिता का अर्थ है उसके रग रग में किसी भी सब अवस्थाओं में जो अभिलाषा होता है उसको अभिलाषा को कहते हैं, अभिलाषा अभिलाषिता। जैसे जिस समय में कृष्ण कोई एक व्यक्ति उसे मार रहा है और उस समय कहा जी है प्रभु मेरी रक्षा करें, जैसे द्रौपदी जी के ऊपर में संकट पड़ा और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, उस समय में द्रौपदी जी ने पतियों के तरफ में देखा, भीष्म द्रोण की तरफ में देखा, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की, तब वो कृष्ण को बुलाने, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन है, अब तो लज्जा हमारी गई। किंतु कृष्ण नहीं आए, मुख में दांत के तले उसका भी अंचल लगा हुआ था, अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिसमें हा कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया, शरणागत हो गए, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे बस चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुशासन की 10,000 भुजाएं, जो 10,000 हाथियों का बल, वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर हो गया और कपड़े को नहीं। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, ये मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु जब ही वो स्वस्थ हुई, अरे है अपने ये तुच्छ शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल लंगा होना ही और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुला, बड़ी ग्लानी और साफ हुआ। अरे नहीं नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। ये दूर हो जाना, ये दूर ना रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी अस्वस्थ अवस्था में, किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कोई चीज की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिस समय हा कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया, शरणागत हो गए, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे बस चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुशासन की 10,000 भुजाएं, जो 10,000 हाथियों का बल, वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर मूर हो गया और कपड़े को नहीं। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, जो मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु जब ही वो स्वस्थ हुई, अरे है अपने ये तुच्छ शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल लंगा होना ही और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुला, बड़ी ग्लानी और साफ हुआ। अरे नहीं नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। ये दूर हो जाना, ये दूर ना रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी अस्वस्थ अवस्था में, किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है। किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कोई चीज की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु का सर्वस्व और उनको हम बुला रहे हैं, उनको इन चीज की कमी है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जो राधा कुंड को मैं बना दूं अच्छी तरह से, फिर कारण अरे मैं बनाने वाला, ये तो चिंतामणि से बना हुआ है, धिकार करने दे। इसलिए किसी किसी समय में आपत समय में जो भगवान से प्रार्थना इत्यादि की जाती है आपत की स्थिति में, वो सब अन्नाभिलाष नहीं है। किंतु स्वाभाविक स्थिति में भी जब हम हैं कहते प्रभु हमको धन दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, रुपया दीजिए, संपत्ति दीजिए, ये दीजिए, मैं ऐसा पुत्र दीजिए, मैं ऐसा पत्नी बन जाऊं भाषण देने वाला जो विश्व ब्रह्मांड को पत्थर मरा दू, सब लोग हमारे बात को सुन करके हमारे चरणों में झुक जाए, तो ये तो हो गई भाई उल्टी बात। इसलिए स्वाभाविक स्थिति में अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, ये अन्नाभिलाषिता काम अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, अभिलाष कभी हो जाए और थोड़ी देर के बाद में उसके प्रति धिक्कार आने लगे, ये तो हो सकता है, इसे अन्नाभिलाषिता काम नहीं है। और एक इसमें बात है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म के बिना हमारा चल सकता है कि नहीं? कोई कर्म नहीं करेंगे भक्ति हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी भाई। एक आदमी है वो श्वास तो लेगा ही नहीं तो मर जाएगा, भक्ति भजन क्या करेगा? भोजन कुछ करेगा कि नहीं? तो ये कर्म है, जो कुछ भी करते हैं वो तो कर्म है फल की इच्छा से, तो बिना कर्म किए एक सेकंड भी नहीं रह सकते। गीता का भी यही उपदेश है, जो कहता है जो मैं कर्म नहीं करता वो मिथ्याचारी, वो मिथ्याचारी है। बिना किए हुए रहने सो रहे हैं ये भी कर्म है, सांस ले रहे हैं भी कर्म, खा रहे हैं वो भी कर्म, चल रहे हैं वो भी कर्म, सब कुछ कर्म है। किंतु भाई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो भक्ति को ठक दे, कर्म बिना नहीं चलेगा, उसमें कृष्ण की भावना लगा करके उसको अनुकूल कर करके उसको कीजिए, तब तो ये ठीक है। और नहीं तो जो कर्म जैसे यज्ञ करने लगे और स्वाहा स्वाहा करने लगे, किस लिए कर रहे हैं? कर रहे हैं जैसे इसे वातावरण शुद्ध होकर के वर्षा हो, इससे और बातें हो, हम सुखी रहेंगे, देश में अन्न फसल इत्यादि हो, और उसके बाद में हम भगवान को अर्पण करेंगे। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। शुद्धा भक्ति होनी चाहिए, उसके द्वारा कर्म से ठक न जाए। कोई कोई लोग ज्योतिष विद्या सीखते हैं, किस लिए क्या जरूरत पड़ी है? लोग आएंगे कहेंगे तुमको पुत्र होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, तबीज दे देंगे, नृसिंह मंत्र दे देंगे, ये सब खबरदार मत करो, इसके द्वारा भक्ति ढक जाएगी। इसलिए उतना ही करो जो भक्ति के अनुकूल करके कर्म के द्वारा हम भक्ति को और विकसित कर सकते हैं, वो ऐसा कर्म होना चाहिए। जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं भी कर्म है, जीवा से चला रहे हैं तो ये कर्म है, किंतु ये भगवत भक्ति है, ये भगवान के लिए हो रही है, इसी पर जीवा के ऊपर में स्फूर्ति होंगे। और अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म, ज्ञान भी यदि अपने मुक्ति के लिए कर रहे हैं और संसार ये कुछ नहीं है, बेकार का है, इससे हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं है, नई कर रहे हैं, ये भक्ति का ठक देगा, ये मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा ये भक्ति को ठक देगा। इसलिए ऐसे ज्ञान कर्म जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा दर्शन उसे योग में समाज में मिलना, परमात्मा बन जाना, ये सब चीजें भक्ति का अवरोधक है, उसे भक्ति को ठक देता है। इसलिए भक्ति के अनुकूल कर्म और ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा। आदि शब्द से आलस्य भी नहीं होना चाहिए। एक बात और भी इसमें है, सुख बात क्या, एक आदमी शुद्ध भक्ति करना चाहता है, किंतु लोक संग्रह करने के लिए कुछ ऐसा कर्म ऊपर से कर देता है जो भक्ति का विरोधी जैसा लगता है, तो उसको भी भक्ति का विरोधी मत समझो। जैसे एक गुरु आचार्य है, हम लोग वैष्णव में भी श्राद्ध होता है, आप लोग जानते होंगे, वैष्णव को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि जो हरिनाम कर लेता है उसका अपने आप कभी श्राद्ध हो गया, उसको श्राद्ध करने कोटि कोटि पिंड देना और पितृपुरुषों को श्राद्ध करना हो जाता है, इसलिए वैष्णव लोग श्राद्ध नहीं, जो हरिनाम कर लिया उसका श्राद्ध क्या, श्राद्ध तो उसके लिए होता है जो नरक में गए हैं, जिनकी कोई गति नहीं उनके लिए श्राद्ध दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। अरे भाई, तो जो हरिनाम किया उसके 33 कितने 21 पीढ़ी के 14 पीढ़ी के और 7 पीढ़ी के लोगों का उद्धार हो गया, उसके लिए पिंड देने की क्या जरूरत है। किंतु लोग कहेंगे, अरे इसने कोई श्राद्ध नहीं किया, इसके पिताजी मर गए वैष्णव थे तो क्या हुआ, तो इसलिए उनके लिए यदि करते हैं और उसमें भगवान को प्रसाद निवेदन करके बस वही उनको निवेदन कर देते हैं उस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा का भी कल्याण हो जाता है और इसमें भक्ति का विरोधी भी नहीं हुआ। इसलिए ये सब विचार करके पूरा तब भगवान की भक्ति जो की जाती है तो उसको कहते हैं उत्तमा भक्ति। कितना बज गया? प्रश्न करनी छोड़ दो। तो इसलिए भाई उत्तमा भक्ति को समझकर और तब इस पर विचार करके वैष्णव के अनुगत्य में नैरंतर्य उसमें लगाकर कृष्ण के लिए रोचमाना हो किंतु प्रतिकूल नहीं हो, ज्ञान कर्म को योग तपस्या को भक्ति करेंगे किंतु भक्ति के अनुकूल उन कर्मों को और ज्ञान को भी करेंगे, जो भी लगा सकते हैं कृष्ण के लिए चिंतन करना और दूसरे प्रकार की अभिलाषा न रहे, तो समझो कि हमारी भक्ति अब क्रमशः मध्यम से उत्तम की तरफ में चल रही है, जीवन कुछ दिनों में ही सार्थक होने वाला है, हमारे अंदर में भाव प्रकटित होगा जो लादनी शक्ति की वृद्धि है और तब फिर प्रेम होने की गुंजाइश है। और जो इस पर विचार नहीं करके भक्ति को करता है कुछ दिनों में उसका चित्त और हट जाता है और अंत में भक्ति से वंचित हो जाता है। आज ही अपना वक्तव्य कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, अन्य तो कीर्तन करके हम लोग बंद करेंगे।
आपने कहा कि दादा जी की सेवा करने से भगवान से संतुष्ट, लेकिन क्या दादा जी को संतुष्ट?
हाँ, वो देखेंगे कि कृष्ण खुश हो रहे हैं और झट खुश हो गए। बच गए, मान ले कि कोई हमारे गुरु भाई हैं, वो अस्वस्थ हो गए, जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं इसलिए जी गुरु जी प्रसन्न हो, गुरु जी ने देखा जैसे हमारे इस प्रिय भक्तों की ये सेवा कर रहा है तो बस गुरु जी प्रसन्न हो गया, ठीक वैसे ही राधा जी की प्रसन्नता से कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता से राधा जी।
मैं उससे प्रश्न कर रहा था जैसे आरती के संबंध में गोवर्धन के रूप में राधा जी से होकर के भगवान कृष्ण के पास आपने बोला कि राधा जी खुश नहीं है,
वो जैसा विधि है वो विधि पालन करना पड़ेगा, कृष्ण को निवेदन करना पड़ेगा और राधा जी को ध्यान करना पड़ेगा, गुरु जी को ध्यान करना पड़ेगा, और जिस समय वो राधा कृष्ण को खिला रहे हैं गुरु जी अपने इस फॉर्म में नहीं रहेंगे पुरुष रूप में, उनको मंजरी के रूप में सखी के रूप में वहां पर जाना पड़ेगा, राधा कृष्ण की सेवा में दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। इस वैसी भावना करके राधा जी ने रसोई बनाई, राधा जी कृष्ण को आरोगन भोजन करा रही हैं और गुरु जी हमारे सखी के रूप में उनको ये सब पानी और ये भोजन थाल और सब उनको सामने रख रहे हैं और राधा जी प्रेम से चलते हुए उनको खिला रही हैं, ऐसी सब भावनाएं करना पड़ता है, यही सब भावनाएं भक्ति के अनुकूल है। और यदि इस भक्ति के अनुकूल में हमने गुरु जी को कह दिया जी ए तत् नैवेद्यम अंगुरवे नमः कर दिया तो गुरु जी प्रसाद पाएंगे, ले जाओ हटाओ हमको जरूरत नहीं, इसलिए गुरु जी को दिया जाएगा, इसलिए कि वो राधा कृष्ण को भोग लगाए, उनको बैठा करके खिलाए और फिर उनका प्रसाद जो होगा धनिष्ठा जी ले आएंगी और ले करके राधा जी को देंगी, राधा जी अपनी सब सहेलियों को बांट करके उसमें अपने गुरु जी दिए हैं और तब फिर अपने खाए। ऐसा नहीं जो कृष्ण भी बैठ गए खाने के लिए और राधा जी बैठ गए, यार और दोस्त जैसे, अरे यार तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसा नहीं। वो यार जगतिक यार और दोस्त ये सब चीजें वहां पर नहीं चलेगा। वहां पर जैसे हमारे परंपरा के नियम है उस नियम से चलना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा ही चले गए समुद्र के किनारे, पिकनिक इत्यादि क्या होने लग गई और दोनों यार बैठ गए बस, अरे भाई बस चलने लगे। इसलिए ऐसा नहीं, विधि विधान के अनुसार में हमको चलना चाहिए। उत्तम पुरुषों के लिए ये, उत्तम भागवतों के लिए ये विधि विधान नहीं, वो किसी का अंकुश शास्त्र का अंकुश भी उन पर नहीं चलता है। वो समझते हैं कि सब कुछ कृष्ण का भोग है, सबका प्रसाद है, वो जहां तहां उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, उनमें कोई भी बात नहीं। क्या बोलिए
भगवान?
प्रथम बार मिले थे गोलोक वृंदावन में, वहीं से उनका मिलन हुआ। गोलोक वृंदावन में भी हस्तिनापुर है और वहां पर द्वारकापुरी है, उस द्वारकापुरी में ही दोनों का मिलन हुआ। जब लीला करने के लिए आते हैं तो इस जगत में, तब कृष्ण मथुरा में और अर्जुन हस्तिनापुर में जन्म लेते हैं और जन्म के समय में ही दो चार पांच वर्षों के बाद में दोनों का मिलन हुआ। कुंती जी कृष्ण की बुआ थी, इसलिए जब कृष्ण अर्जुन पैदा हुए तो कृष्ण अपनी बुआ जी के पास में अपने भाई का से भेंट करने के लिए गए। उनको ले गए देवकी और वसुदेव जी, कृष्ण को गोदी में लेकर वहां पर ले गए थे उनको दर्शन कराने के लिए, इसलिए वहीं पर उनकी भेंट हुई। और वो लोग वृंदावन में द्वारका में तो नित्य, आपसे और हमसे अभी कृष्ण का भेंट नहीं हुआ किंतु भेंट हुआ ये समझिए। हम लोग यहाँ कराने वाले नहीं है, ये शरीर हम लोग नहीं है, हम लोग वो लोग वैकुंठ धाम कराने वाले हैं। जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा वेद का, इसलिए बैक टू गॉड एंड बैक टू होम हमको चलना पड़ेगा। कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है, हम उनको भी छोड़ करके आए यही हमारी गलती है, इसलिए उनका नित्य ही संग है। हम जो संग देखते हैं वो भूल से देखते हैं कि उस समय उनका कब पहला संग हुआ, किंतु उन लोगों का सब समय संग ही संग है। राधा जी से कृष्ण का कभी भी छोड़ नहीं होता। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन से कृष्ण कभी एक पैर भी नहीं जाते, इसलिए राधा जी से उनका कभी भी विरह नहीं है। किंतु इस लीला में ऐसा दिखता है जो उनका विरह है, तो ये भी सत्य है वो भी सत्य है, जिसके लिए ये सत्य है किसी के लिए वो सत्य है, किसी के लिए दोनों सत्य है, अपने अपने अधिकार पर यह सब निर्भर करता है।
राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल
होवे है आराधे हा कृष्णा बाले कवे गौरावन सुरधनी तचे आराधे हा कृष्णा बाले आराधे हा कृष्णा बाले हमें कंदिया
I'm a